बदलाना है।
ओम शांति। हम मधुबन बाबा के बेहद के घर में आए हैं और मैं समझती हूँ कि हरेप अपने जीवन का श्रृंगार कर रहा है। जैसा कि बहन जी ने कहा कि आज का जो विषय है वह है सेल्फ प्रोग्रेस और सेवा का बैलेंस। तो मैं उस समय ये बात सोच रही थी कि बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है और हम सभी भी इसके महत्व को समझते हैं। मुझे इस शब्द को जब मैंने सुना तो मेरे मन में एक बात याद आ गई कि 1978 में जब हम बाबा से मिल रहे थे, अव्यक्त बाप दादा से, तो उस समय बाबा ने मुझे जीवन में एक बात कही थी और बाबा ने कहा था कि बच्ची, याद और सेवा का बैलेंस रखकर चलना तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगी। दुनिया के हिसाब से भी अगर हम लॉजिकली इस बात को लें, बैलेंस की बात को, तो मैं समझती हूँ कि ये बात कही जाती है कि हम लौकिक में भी जब खाना खाना पसंद करते हैं तो बैलेंस डाइट खाना पसंद करते हैं, और यदि थोड़ा सा उसमें इम्बैलेंस होता है तो हम समझते हैं कि ये डाइट से हमारी जो तबीयत है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी और डॉक्टर फिर से हमें एडवाइस करता है कि आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस हो रहा है उसके लिए आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसी तरह से आप देखेंगे कि हम लोग बैलेंस्ड लाइफ की भी बात करते हैं। कोई अगर मानो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है और सारा टाइम घर ना देख करके वहीं लगा रहता है तो भी हम इस बात को कहते हैं कि आपको घर में भी समय देना बहुत ज़रूरी है। माना दोनों का बैलेंस रख करके चलो। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा अपने शरीर पर भी ध्यान दें तो हम लोग इस बात को पाते हैं कि हमारे मस्तिष्क के भी दो भाग हैं, एक है लेफ्ट, एक है राइट हेमिस्फीयर, जिसके अंदर एक लॉजिकल से जुड़ा है और दूसरा इमोशनल से। और बाबा ने आकर के हमें इस बात की समझ दी कि बच्चे, जब तुम दुनिया के अंदर रहे तो तुम्हारा जो लॉजिकल भाग था वो बहुत ज़्यादा विकसित रहा, लेकिन अभी तुम बच्चों को अपने इमोशनल साइड को, एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग है, जो भाव है, वो अपनेपन का, उसको तुम्हें बढ़ाना है। दुनिया में भी अगर मानो हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है तो भी हम कहते हैं कि ऑक्सीजन कम है, हमें घुटन होती है, हमें बैलेंस चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो कहने का भाव ये है कि दुनिया में बैलेंस होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लेमैन भाषा में इस बात को लें तो मैं समझती हूँ कि अगर हम बैलेंस का हिंदी में मीनिंग लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस माना संतुलन। अगर कोई ठीक से बात नहीं करता है तो भी हम व्यक्ति को कहते हैं कि इसने तो अपना बैलेंस खो दिया है। कोई थोड़ा सा ज्ञान में आकर के ज़्यादा झुक जाता है ज्ञान की तरफ तो भी हम ये बात कह देते हैं कि ये बैलेंस से नहीं चल रहा। तो हम लोग यहाँ पर बाबा के घर में आते हैं एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को जीने के लिए, ताकि हम संसार में रहते हुए एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छे बाबा के बच्चे बन सकें। क्योंकि अगर जैसे एक गाड़ी होती है, अगर गाड़ी का एक भी पहिया थोड़ा सा भी कमज़ोर होता है या ऊपर नीचे होता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर हम इम्बैलेंस पाते हैं। और ऐसी गाड़ी यदि किसी टर्न से निकल रही हो तो हम कहेंगे कि भैया ज़रा ठीक से चलाना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये गाड़ी हमें ज़िंदगी से ही हाथ दिला दे। तो इसलिए कहने का भाव ये है कि कई बार लाइफ में चलते चलते ऐसी बातें आ जाती हैं जिन बातों के अंदर हम बैलेंस को खो देते हैं। और मधुबन जो बाबा का बेहद का घर है, हम जब यहाँ पर आते हैं तो मैं बहुत तरह की बातें, क्योंकि हर एक का लेने का अपना अपना तरीका होता है, जिसको जीवन में जो चाहिए होता है, मधुबन बाबा का एक ऐसा बेहद का घर है वो यहाँ आकर के हमें मिल जाता है। जैसे सागर होता है, सागर के पास हम जाते हैं तो हमें एक बहुत गहरी ठंडक का एहसास होता है, इसी तरह से जिसकी जो चाहना होती है यहाँ आने पर हम अपनी उस चाहना को पूरी कर पाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि प्रश्न ये पैदा होता है कि हम सभी चाहते तो हैं कि हमारा जीवन बैलेंस्ड हो, लेकिन बैलेंस्ड लाइफ के लिए जो मूल बात है वो है बेस की। जैसे मानो हम सोफ़ा या मैं कुर्सी जिस पर बैठी हूँ, अगर इसका बेस स्ट्रांग है तो क्या होता है, हम आराम से स्टेबल रीति से उस पर बैठ सकते हैं। और यदि थोड़ा सा उसका बेस थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाता है या हल्का होता है तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हम कहीं उस पर से गिर ना जाएं। तो बैलेंस के लिए मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो लाइफ के अंदर है कि हमारा जो मूल है शरीर के अंदर वो क्या है, आत्मा। तो हम सेल्फ प्रोग्रेस को कह सकते हैं सार, और अगर हम सेवा के सब्जेक्ट को लें तो हम इसको कह सकते हैं विस्तार। दूसरे एंगल से अगर हम इस बात को लें और समझें तो मैं समझती हूँ कि सेल्फ प्रोग्रेस हमारे लाइफ के अंदर मजबूती लाती है और सेवा जो है वो हमारे जीवन में निखार लाती है। क्योंकि हमें ये जो मनुष्य जीवन में इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स का हमको प्रयोग भी करना है। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को खेलने के लिए एक खिलौना दे दिया कि बच्चे जो तुम अपने अंदर में भरते हो इसको आप औरों के साथ शेयर करते रहो। और इसी को शेयर करने के लिए हम लोग जो हैं रोज़ बाबा की मुरली भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। उसके अंदर भी बाबा हमेशा बैलेंस की बात करते हैं कि बच्चे तुम बैलेंस से चलो। और इसी बैलेंस का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल जो हमारे सामने है वो है हमारे देवी देवता। बैलेंस्ड लाइफ, दुनिया के सारे ऐश्वर्य भी हैं, सभी चीज़ें भी हैं, लेकिन फिर भी उनका जो जीवन दिखाया जाता है वो न्यारा और प्यारा दिखाया जाता है, जिस कारण से लोग उनकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। परंतु देखने में ऐसा आता है कि कई बार हम लोग लाइफ में जब चलते हैं तो हमारे जीवन में कई बातों में इम्बैलेंस आ जाता है और हम लोग सोचने लग जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम तो सोचते नहीं थे कि ऐसा होना चाहिए, पता नहीं हमारी जो खुशी है वो क्यों गुम होती चली जा रही है, इसका क्या कारण है। और सोच सोच करके हमारे अंदर में एक इस प्रकार का टेंशन या दिल शिकस्त की हमारी स्थिति हो जाती है, जिस कारण से हम लाइफ में जो उमंग उत्साह महसूस करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जीवन के अंदर जो इम्बैलेंस आता है उसके कई कारण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ज्ञान में चलना शुरू करते हैं, अगर हम एकदम आरंभ की ही बात को लें तो कई बार हम लोग ज्ञान में इतने ज़्यादा झुक जाते हैं सेल्फ प्रोग्रेस की तरफ, इतना ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि जो हमारा परिवार है उसकी तरफ हम लोग अटेंशन कम कर देते हैं। और वो अटेंशन कम होने की वजह से कहीं लोगों को ये लगने लगता है कि ये इम्बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हैं। हमें खुद को नहीं मालूम पड़ता है लेकिन लोग हमें कई बार कमेंट करते हैं कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं ये लाइफ जो है आपकी ठीक नहीं है और आपको यहाँ पर ठीक से चलना बहुत ज़रूरी है। बहुतों के जीवन में ऐसा भी होता है कि हम लोग बहुत बैलेंस्ड वे से भी चलते हैं लेकिन कई बार बाबा की बातों को हम थोड़ा सा राइट वे में नहीं लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा किसी बात का भाव पकड़ो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कोई बात हमको कह दी तो क्या हो गया, हमने उसके शब्दों को पकड़ लिया। और शब्दों को पकड़ने के कारण से कई बार क्या हो जाता है कि हम छोटी सी बात को एक बहुत बड़ा इशू बना देते हैं और इशू बनाने की वजह से वो बात फिर हमारे अंदर हमारी स्थिति को खोखला करती चली जाती है और हम अंदर ही अंदर उस बात को सोच करके फिर परेशान होने लगते हैं कि बात इतनी बड़ी नहीं थी पर मैंने अपनी सोच से अपनी पर्सनालिटी से छोटी सी बात को बड़ा बना दिया। इसलिए बाबा ने हमेशा एक बात हम बच्चों को कही है कि बच्चे जो बात जितने मैग्नीट्यूड में है उसको हम उतने ही मैग्नीट्यूड में देखें, राइट थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। अपनी पर्सनालिटी से, अपने व्यवहार से, अपनी इमेज से कई बार अटैच होकर, अपने रोल से अटैच होकर हम कई बार छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जीवन में एक इम्बैलेंस खड़ा हो जाता है और हमारी सोच चलने लगती है उस बात के प्रति। और दूसरा व्यक्ति भी जब हमसे डिस्टर्ब होता है तो हमारे जो रिलेशंस हैं उसके अंदर डिसहार्मनी क्रिएट हो जाती है। दूसरी बात मैं समझती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग योग को अपना लाइफस्टाइल नहीं बनाते हैं। हम लोग समझते हैं कि योग करना है तो योग करना है, लेकिन बाकी जो समय है वो सारा समय मेरा अपना है। तो जब हम लोग योग को अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो वो मेरे एक जीवन का हिस्सा बन जाता है। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि चलते फिरते जब हम लोगों के साथ व्यवहार में आते हैं तो व्यवहार में आने से लोगों को हमारे साथ ये महसूस होता है कि वाकई में इनका जो जीवन है वो बहुत महान है। क्योंकि वैसे भी आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर भी अगर किसी टॉवर को बनाया जाता है तो जितनी ऊंची मीनार होती है उससे कहीं ज़्यादा गहरा उसका बेस होता है। अगर गहरा बेस नहीं होता है तो आप देखेंगे उस इमारत के गिरने का डर रहता है। ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू शुरू के अंदर जब बच्चों को तैयार किया तो 14 साल बाबा ने बच्चों की इमारत को तैयार किया, उनके बेस को तैयार किया, उनको इतना स्ट्रांग बनाया कि वो दादियाँ आज हमारे सामने एक मिसाल के रूप में हैं कि इतनी उम्र में होते हुए भी आज हम देखते हैं कि उनके जीवन में इतना उमंग उत्साह है। तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम बच्चे चलते चलते जो कई बार या तो योग में बिल्कुल नहीं रहेंगे या फिर हम लोग योग में बहुत ज़्यादा समय देने लगते हैं और जो हमारी बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए उस पर हम ध्यान नहीं देते, तो उससे भी कई बार हमारे अंदर में तनाव पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें कई बार ये बातें सुनने को मिल जाती हैं कि बस इनको तो योग से बढ़कर और कोई काम नहीं है। क्योंकि हम सब जब परिवार में रहते हैं, चाहे वो बीके लाइफस्टाइल है या हम लोग परिवार में लौकिक के साथ रहते हैं, तो हमें देख करके इस बात को समझकर चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस समय हमें कहाँ पर किस तरह का रोल प्ले करना है। काम के समय कई बार हम लोग योग करते हैं तो भी एक इम्बैलेंस हो जाता है, सेवा हमारी छूट जाती है, हम क्लास के लिए गए हैं हम लोग वहीं भावना में बह गए, परिवार में आए जो सेवा थी वो हमारी थोड़ी सी कम हुई, उससे भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और अदरवाइज हम देखें कई बार हम सेवा में भी कई बार जाते तो वहाँ पर हमारी कई प्रकार की इच्छाएं जब आपस में पैदा हो जाती हैं, चाहे वो नाम मान शान को लेकर के हो, तो भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस आ जाता है। क्योंकि हम उस समय जब इन बातों से अटैच हो जाते हैं तो उसी पल हम बाबा से डिटैच हो जाते हैं। जो बात आज बाबा ने भी कही थी कि जब बातें सामने आ जाती हैं तो क्या हो जाता है, बाप फिर पर्दे के पीछे हो जाता है और वो बातें फिर चलते चलते हमें जीवन में उमंग उत्साह को कम कर देती हैं। मुझे याद आता है कि अपने जीवन में, क्योंकि हम लोग 1973 से ज्ञान में चले सन 1973 से, कभी हमारा जो उमंग उत्साह है वो सोडा वाटर नहीं हुआ। तो मैं कई बार साक्षी होकर के अपने आप को देखती हूँ कि इसका रीज़न क्या है। ऐसी बात नहीं है कि ज्ञान में चले तो कोई बात नहीं आई, बहुत बातें सामने आई, लेकिन हमेशा हमने देखा कि कभी भी आप बातों को नहीं देखो, बातों को ना देख करके बाबा को देख करके चलो, बाबा आपको टच करता है कि बच्चे इस परिस्थिति में आपको कैसे चलना है, परिवार में आपको कितना समय देना है, अलौकिक परिवार के साथ आपको कैसा चलना है। और जब बाबा सामने होता है तो ऑटोमेटिकली हर बात के अंदर हमारे में जीवन में बैलेंस बढ़ता चला जाता है। एक और बात जो मैं समझती हूँ कि जिससे हमारे जीवन में इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, हम लोग देखते हैं कि कई बार कोई हमसे आगे निकलता है तो हमारे मन में क्या भाव पैदा होने लगता है, ईर्ष्या का भाव आने लगता है कि भई ये मेरे से आगे निकल गया, देखो आए तो पीछे हैं। लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया है, बाबा ने उस समय हमें कहा कि बच्चे अपने आप को अपनी सोच के लेवल पर पकड़ो। क्यों? क्योंकि जहां मेरा ये थॉट आना शुरू हुआ, वहां पर थॉट के साथ मेरे अंदर में एक फीलिंग जनरेट हुई और वो फिर जब एक्शन में आई, तो हम सबको ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि सबसे फास्ट गति से जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो कौन सी है? थॉट पावर, संकल्प शक्ति। तभी लोगों ने कहा कि संकल्प में बहुत शक्ति है। दुनिया में लोगों ने कह दिया कि ब्रह्मा को संकल्प आया कि मैं नई सृष्टि रचूं, और उसने संकल्प के आधार पर सृष्टि को रच दिया। तो जब हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है, तो बाबा ने हमें ये समझ दी है कि बच्चे नेगेटिव थॉट का आना माना उसके साथ बहुत सारे और नेगेटिव विचारों का आना, बहुत सी बुराइयों की प्रवेशता मेरे अंदर में होना, तो उससे क्या होगा कि मेरे अंदर में कॉम्प्लेक्स डेवलप होता चला जाता है और जो मेरे रिलेशंस हैं उसके अंदर भी डिसहार्मनी क्रिएट हो जाती है, दूसरे को भी मेरे अंदर से दूरी महसूस होने लगती है। और जब हम आपस में दूर होने लगते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा एक दूसरे के करीब आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे मन में हमेशा एक पुरुषार्थ रहता है। मैंने एक बात सुनी थी दादी से, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि कभी भी किसी को आगे बढ़ता देखते हो तो हमें हमेशा खुश होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये भी मेरे परिवार का सदस्य है, अगर ये आगे बढ़ रहा है तो मुझे इसमें खुशी है, इसके आगे बढ़ने से मेरा भी भला है। क्यों? क्योंकि उस समय जब मैं उसके प्रति पॉजिटिव क्रिएट कर रही हूँ तो मेरे अंदर में कौन सा भाव भर रहा है? शुभ भावना का भर रहा है। और हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी आगे बढ़ता है, किसी को ऐसे ही आगे ना दुनिया में बढ़ा दिया जाता है ना यज्ञ में बढ़ा दिया जाता है। एक कहावत आती है दुनिया के अंदर, लोग मानते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो कोई बड़ा काम नहीं करते, वो छोटे काम को ही बहुत अलग तरीके से करते हैं। दादियों ने जो भी कार्य किया, बाबा ने जो भी कार्य किया, बहुत छोटे छोटे कार्य को बाबा ने बच्चों को बहुत खूबी से करना सिखाया। तो इससे क्या हुआ कि बाबा बच्चों के सामने एक मिसाल बन गए। दादियों ने हर छोटे काम को बहुत खूबी से हमारे सामने रखा, जिस कारण से आज हम देखते हैं कि दादियां भी हमारे सामने एक बहुत अच्छी मिसाल है। तो इसलिए अगर हम किसी भी बात को इस तरह से लेते हैं कि कोई आगे बढ़ रहा है तो जरूर उसकी कोई विशेषता है। बाबा ये भी आगे बढ़े और मैं भी आगे बढ़ूं। तो जो हमारे झगड़े पैदा होते हैं, जो परिवार में, चाहे वो लौकिक परिवार है या वो अलौकिक परिवार है, सेवा में कई बार हमारी ऊंच नीच हो जाती है कि इनको क्यों पूछा जाता है, ये इस तरह से क्यों चलते हैं, तेरे मेरे का भाव पैदा हो जाता है, तो इन बातों में जाने से हमारी ना सेवा की उन्नति होती है और ना हमारी सेल्फ प्रोग्रेस होती है। तो मैं समझती हूँ कि अगर इन बातों पर हम थोड़ा सा ये जो इम्बैलेंस की बातें चलते चलते ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि कई बार बहुत सी बातें हैं जो थोड़े समय के अंदर हमको अचीव करनी है, और जब कम समय होता है और फास्ट गति होती है, जैसे जर्नी के अंदर होता है कि आपको बहुत कम समय में बहुत सी बातें अचीव करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उतना ही ज़्यादा अटेंशन बढ़ा देते हैं। गाड़ी फास्ट स्पीड पर है, हमें पता है हाईवे है, तो हमें क्या करना पड़ता है, मेंटली अलर्ट रहना पड़ता है। तो इसी तरह से अगर हम बैलेंस्ड लाइफ को बनाए रखना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा हम लोग अगर अपने ऊपर अटेंशन रखें, तो अटेंशन रखने से बहुत सी बातों की जो परेशानियाँ हैं वो हमारे जीवन से ख़त्म हो जाती हैं। एक बहुत बड़ी बात और जो मेरे मन में आती है कि इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए हमें हमेशा अपने आप को स्टडी में बिज़ी रखना चाहिए। कई भाई बहन होते हैं, उनके जीवन की अगर आप हिस्ट्री सुनो तो आप हमेशा सुनेंगे कि कई भाई बहन सुनाते हैं कि हमें मुरली से बहुत प्यार है, हम लोग दिन में 8 बार मुरली पढ़ते हैं। कई बार सुनाते हैं कई भाई बहन कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई इधर उधर की बात ज्यादा चर्चा करता है तो हम उनकी बातों को क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। हम कहते हैं कि ये छोड़ो, इन बातों में हमें क्या जाना। लेकिन कईयों को ऐसी आदत पड़ी होती है कि कोई ऐसी बात सुनाता है तो हम लोग उनकी बातों को और ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के कुरेदने की कोशिश करते हैं। तो जहां ये कुरेदने का भाव होता है ये हमेशा हमें क्या करता है, नीचे गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि जो गणेश की सवारी दिखाई जाती है वो किस पर दिखाते हैं, चूहे पर दिखाते हैं। तो ये जो कुतर कुतर करने की आदत है, बातों को कुरेदने की आदत है, छोटी बात को बड़ा करने की आदत है, उसको बढ़ाकर बताने की आदत है कि हाँ आपने ऐसा कहा, वो भी आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, तो ये जो ब्राह्मणों के जीवन के अंदर घुन लग जाता है ये हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और इससे हम अंदर ही अंदर खोखले होते चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लकड़ी के अंदर जब दीमक लग जाती है तो लकड़ी भीतर ही भीतर खोखली होती चली जाती है और हमें बाहर से उसके बारे में पता नहीं लगता। कैंसर का पेशेंट होगा, अंदर ही अंदर उसको परेशानी होती चली जाती है और बाहर से पता नहीं पड़ता है कि आफ्टरऑल ये सब क्या हो रहा है। और जब बीमारी डायग्नोज होती है तो मालूम पड़ता है कि छोटी सी बात जो थी अगर हम इसको शुरू में ही पकड़ लेते और इस पर ध्यान देते तो कितनी बड़ी बात होने से बच जाती। क्योंकि संकल्प ही हमारा बीज है और ये बीज यदि मजबूत है, पावरफुल है, तो हमारी जितनी भी शक्ति आगे ट्रांसमिट होती है वो हमारे विचार से ही ट्रांसमिट होती है। और इसी के आधार से हमारा भाग्य भी बनता है। क्योंकि हम देखते हैं बाबा, कई बार हम जब छोटे थे तो हम ऐसा सोचा करते थे कि शायद बाबा बड़ों को, जो सीनियर्स हैं यज्ञ में, शायद उनको कोई बहुत अच्छी बातें सुनाते होंगे, उनको कोई प्राइवेट बातें बताते होंगे। लेकिन हमने देखा कि बाबा, हम सब जानते हैं कि जब शिव बाबा आते हैं तो वही एक तो मुरली, साकार मुरली हम सबके पास जाती है, और दूसरा जब शिव बाबा आते हैं अव्यक्त बाप दादा के रूप में तो भी देखने में आता है कि बाबा सभी से बराबर बात करते हैं और बात करते हुए दादियों से भी क्या बात कर रहे हैं वो भी बात हमको। तो बाबा जो भी देता है हम सबको बराबर देता है। लेकिन हमारा जो भाग्य फर्क हो जाता है और भाग्य फर्क होने के कारण से जो हमें संकल्प चलने लगते हैं कि हमारे जीवन में उमंग उत्साह नहीं आ रहा, दिल शिकस्त हम होते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ हम नहीं महसूस कर रहे, तो ये बातें हमारे जीवन में तभी पैदा होती हैं जब हम लोग थोड़ा सा अपनी पढ़ाई से आगे पीछे हो जाते हैं, थोड़ा सा अपनी सीट से हम लोग हिल जाते हैं और कुतर कुतर की जो हमारी आदत है, बातों को कुरेदने की, जो हमारे अंदर में नेगेटिविटी का झाड़ पैदा कर देती है और हमें भीतर से खोखला कर देती है, तो उन बातों को पकड़ना हम छोड़ दें। क्योंकि जितना हम इन बातों को पकड़ते हैं उतना हमारे मस्तिष्क के अंदर मेंटल ब्लॉक्स पैदा हो जाते हैं। और जो चीज़ हमेशा ब्लॉक्ड होती है वो ये माना जाता है कि वो कभी भी ऊपर की ओर नहीं जा सकती। और जितना हम लोग हल्के नहीं रहेंगे, बैलेंस्ड नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, उतना ही हमारे जीवन के अंदर जो टेंशन है, परेशानी है, या क्या क्यों कैसे के क्वेश्चंस हैं वो चलने लग जाते हैं। दूसरी बात मैं समझती हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारे जीवन में थोड़ा सा भी हमें लगे कि इम्बैलेंस हो रहा है, कोई हमें इसके लिए गाइडलाइन दे रहा है कि आप ऐसे नहीं ऐसे चलो, तो हमें साक्षी होकर के अपने आप को देखना चाहिए कि मेरे को ये जो डायरेक्शन दी गई है डेफिनेटली इसके पीछे बड़ों का कोई राज होगा। और बाबा ने क्या श्रीमत दी है इस बात के प्रति मुझे वहाँ पर अपने आप को चेक करके चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाबा ने इस बार भी जब लेटेस्ट मुरली चलाई, और अदरवाइज़ भी बाबा कई मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको बार बार रिपीट करते आ रहे हैं, उनमें एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे ब्रह्मा बाबा ने जो किया उसको तुम कॉपी करो। मम्मा ने भी क्या किया, शिव बाबा ने जो कहा
ब्रह्मा बाबा के थ्रू उसको उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में उतार लिया। और देखो मम्मा कितना लेट आई थी, मैं कई बार इस बात को सोचती हूँ कि कितना लेट आई थी, लेकिन वो यज्ञ के अंदर एक नंबर वन सोल बन गई, जिनके सामने कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, सारी उनकी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन था, उसके बेस पर वो इतना ऊंच बन सकती हैं, जबकि आज हमारे सामने क्या नहीं है, सभी कुछ है हमारे सामने। आज हर चीज़ की VCDs अवेलेबल हैं, हमारे सामने सीनियर्स अवेलेबल हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। हम ये कहें कि चलो सारे गुण एक में नहीं हैं, लेकिन एक एक गुण तो हर एक में है, तो वो विशेषता अगर एक के अंदर हो सकती है तो वो विशेषता मेरे अंदर क्यों नहीं हो सकती। तो अगर थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग इनर वर्क करते हैं तो मैं देखती हूँ कि हमारे भीतर में जो एक खोखलापन पैदा हो जाता है, जिससे हमारे में इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं रह पाता, तो बेस हमारा ऐसा सोचने से स्ट्रांग बन जाता है। और जब बेस स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, आप देखते हैं कि एक वृक्ष होता है, वृक्ष का कितना झाड़ होता है, कितना विस्तार होता है, लेकिन उसका जो जड़ होती है वो नीचे में होती है और वो जड़ ही उस पेड़ को पूरा पकड़ करके रखती है। तो इसलिए हम लोग कई बार बातों के विस्तार में जो चले जाते हैं, इन बातों के विस्तार में जाने से हमारा सारा इम्बैलेंस हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि दादियाँ इतने बड़े कारोबार को, एक बार बात हो रही थी निर्वैर भाई के बारे में, तो एक भाई कहने लगे देखो यज्ञ के कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कितनी बातें संभालते हैं, संभालते हुए भी वो हमेशा खाली लगते हैं, बैलेंस्ड लगते हैं, रीजन बीइंग न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस। बात हो गई तो उस बात को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं। तभी बाबा ने हम बच्चों को लास्ट में अभी रिवाइज कराते हुए ये बात कही कि बच्चे तुम बच्चों को इस बात पर ध्यान रखना है कि मुझे फुल स्टॉप लगाना है। अब फुल स्टॉप लगाना है, किस बात पर लगाना है, इसका भी पुरुषार्थ हर एक का अपना अपना होना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना पुरुषार्थ होगा, मेरा किस बात पर फुल स्टॉप नहीं लगता है, आपका अपनी प्रकार का फुल स्टॉप हो सकता है। कहीं किसी को हो सकता है ज्ञान की पराकाष्ठा को बढ़ाने की ज़रूरत है, मानो मेरा फुल स्टॉप इसलिए नहीं लगता, किसी ने मुझे कुछ कह दिया मेरे अंदर में एकदम अहम भाव आ जाता है, और मेरे को इस समय इस बात की ज़रूरत है कि मेरे को समझ हो। हर एक का अपना अपना रोल है। अब मैंने इस ज्ञान की पॉइंट को बहुत गहराई से यदि एनालाइज नहीं किया है तो एट टाइम्स जब मेरे सामने कोई चैलेंज आएगा तो वो क्या होगा, मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, और मैं कितना भी सोचूं कि मैं उसको चांस में बदल लूं, उसको मैं एक अवसर में बदल लूं, वो नहीं हो सकेगा। तो इसलिए संगम का बहुत कम समय है और इस कम समय के अंदर हमको बहुत कुछ प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए हमको इस बात पर ज़रूर ध्यान देना है कि कोई भी बात मेरे सामने आती है तो ये मेरे सामने एक अवसर के रूप में आई है, गिफ्ट के रूप में आई है, ये प्रेजेंट मोमेंट ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि प्रेजेंट में जियो, भविष्य में जिएंगे, कल ऐसा कर लेंगे, कल आज नहीं अमृत वेला उठाए, कल तो हम जरूर उठ जाएंगे, कल उठने का टाइम होगा तो क्या होगा, नहीं नहीं रात को सोचा तो था कि 10 बजे सो जाएंगे, नहीं सो पाए थे, अब थोड़ा सा लेट हो गए, तो फिर संभव नहीं हो सकता है, तो वो मेरे हाथ में नहीं है, जो निकल गया वो भी मेरे हाथ में नहीं है, तो मेरे हाथ में क्या है, बीच में प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट ही मेरे लिए पिलर है, और दोनों तो मेरे लिए क्या है, फ्यूचर और पास्ट, कल है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम उस चीज़ को मजबूत बनाना चाहते हैं कि मेरा भविष्य भी अच्छा हो, मेरा पास्ट भी अच्छा हो, तो उसके लिए मेरे को वर्तमान समय में अपने आप को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ है जो अगर हम सभी करें तो बहुत अच्छा रहे, कि बाबा हमेशा विचार सागर मंथन की बात करते हैं। कई बार होता है कि किसी ने हमें कुछ सुनाया होता है, हम उस बात को उतना ही सुन लेते हैं और सुन करके हम दूसरे तक उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देखो यदि हम एक स्थान पर एक गड्ढा 4 फुट का खोद लें, दूसरा गड्ढा भी 4 फुट का खोद लें, तीसरा भी 4 फुट का खोद लें, इधर भी हम दो दो तीन तीन फुट के 4 फुट के गड्ढे खोद लें, तो पानी निकलेगा क्या? निकलेगा। तो करना क्या पड़ेगा? एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर हम लाइफ को मजबूत बनाना चाहते हैं, बैलेंस्ड बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर ज्ञान की पॉइंट की गहराई में जाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ मेरे जीवन में स्वरूप बन करके आएगी। बड़े लोग आज फुल स्टॉप लगा पाते हैं, हम लोग नहीं लगा पाते। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। कभी भी किसी से पूछ करके देखो, जिंदगी में दुनिया में जो बड़े ऊंचे बने, जीवन को ऊंचा बनाया, तो उन्होंने विचार सागर मंथन किया। और मंथन से ही ये बात कही जाती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मंथन से ही मथानी को जब चलाते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है, उसके बिना मक्खन नहीं निकलता है, और जो हमें शक्ति को प्रदान करता है। तो इसलिए हमें ज्ञान पर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात हम ले सकते हैं, मानो किसी का योग में थोड़ा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, ज्ञान तो है, समझ तो है मुझे कि इस समय मुझे ये सोचना चाहिए कि हर एक का अपना अपना रोल है, मुझे अपनी बुद्धि को बेहद में रखना है, मुझे हद में नहीं आना है, लेकिन फिर हम वही रोल प्ले कर जाते हैं। तो अब ऐसी हैबिट्स को चेंज करने के लिए मैं समझती हूँ कि हमें एक शॉर्ट टर्म गोल रखना चाहिए अपने सामने। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल जो बाबा ने हमको दिया कि बच्चे तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है या अपने को निर्विकारी बनाना है। अब हम टोटल ले लें एज ए होल, इस बात को अगर हम ले लेते हैं कि मुझे अपने आप को निर्विकारी बनाना है, तो ये बात संभव नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर में क्या क्या कमजोरियां हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो मेरे अंदर में नहीं होनी चाहिए। तो उस पर बैठ कर के मुझे फिर देखना पड़ेगा कि मेरे में योग की कमी है, जिस कारण से ये बात तो मुझे याद आती है लेकिन मेरे पास शक्ति नहीं है। जब मैं उस बात को आई वॉन्ट टू पुट दैट इन टू एक्शन, तो क्या हो जाता है? तब मैं उसमें सफल नहीं हो पाती हूँ या हो पाता हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए पावर। तो इसीलिए बाबा हमेशा बैलेंस की बात करते हैं कि बच्चे, यज्ञ में भी ये नियम है, आप देखेंगे कोई भी सेवा होती है तो सेवा के साथ में क्या अटैच होता है? भट्टी अटैच होती है कि अब आपने बहुत सेवा की, विंग की सेवा की, तो एक दिन भट्टी और उसके बाद फिर जो है सेवा। तो याद और सेवा के बैलेंस से हम लोग स्ट्रांग बन सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, ऊंच बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ज़रूरत है कि रोज़ हम अपना ऑडिट करें, और यदि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो देखने में ऐसा आता है कि बहुत बड़ा जीवन के अंदर नुकसान हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा अपना ही होता है कि मेरा माइंड और इंटेलेक्ट हार्मनी में नहीं आते। हम कह कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ और है। तो जहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल सेम नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। हम लोग साइंस में जब प्रैक्टिकल करते थे तो हम लोग ऐसा देखते थे कि थ्योरी में जो पढ़ाया जाता था और जब प्रैक्टिकली हम उसको करने के लिए चलते थे तो उसमें बहुत सी बातें आती थी। इसीलिए बाबा हमको बार बार ये याद दिलाते हैं कि बच्चे, बहुत समय के अभ्यास की ज़रूरत है। एक और बात जो मैं समझती हूँ कि इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए हम लोग याद रखें कि मेरे को बाबा ने किस लिए चुना है। कई बार आकर के हम लोग कई बातों में जो चले जाते हैं, तो जब हमको ये बात याद रहती है कि हम लोग यहाँ पर जो यज्ञ में आए थे, बाबा का बने थे, जो मेरा फर्स्ट डे था, उस समय हम क्या सोच करके ब्रह्मा कुमारी इसमें आए थे? कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हमें बहुत सेवा मिलेगी। हमें ये पता था कि हम अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए जा रहे हैं, और अपने को स्ट्रांग करना माना जो मेरी इनेट क्वालिटीज़ हैं, जो मेरा अनादि स्वरूप है, जो मैं गुण संपन्न आत्मा हूँ, उस स्वरूप को बार बार इमर्श करना। और जितना मैंने अपने स्वरूप को इमर्श कर लिया तो ऑटोमेटिकली मैं क्या हो गई? स्ट्रांग हो गई। और जब मैं खुद स्ट्रांग हो गई तो मैं फिजिकली जब एक्शन में आऊँगी तो ऑटोमेटिकली जो मेरा व्यवहार होगा वो कैसा होगा? डेफिनेटली अच्छा होगा। तो प्रैक्टिकली इन बातों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और यदि हम प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो बाबा फिर हमें इस बात की वार्निंग देता है कि बच्चे समय तुम्हें कराएगा। और बाहर से भी हमें कंप्लेंट सुनने को मिलेगी कि देखो कहते तो बहुत कुछ है लेकिन इनके जीवन में प्रैक्टिकल नहीं है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है हमें अपने आप को तैयार करने का, अपना श्रृंगार करने का। ये पल मेरे से यूं ही ना निकल जाए ताकि हमें पछताना पड़े। तो अगर थोड़ा सा हम इस बात पर गौर करें और अपने जीवन को हम मजबूत बनाएं कि मैं जब बाबा की आई थी, बनी थी, तो इसी लक्ष्य को लेकर के आई थी, मुझे बस अपने आप को बनाना है, मुझे बनाना है, मुझे बनाना है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि बाबा ने मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चुन लिया कि मैं औरों की सेवा के निमित्त बन गई। तो ऐसा जब हम सोच करके चलेंगे तो मैं समझती हूँ कि हम लौकिक का, अलौकिक का, न्यारे प्यारेपन का, लव और लॉ का, ज्ञान का, योग का, सेल्फ सर्विस और सेवा का एक बहुत अच्छा बैलेंस रख करके चल सकते हैं। ओम शांति। तो अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और बैठ करके सभी अपने आप को देखना कि मेरे अंदर में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको मुझे अपने जीवन से निकालने की ज़रूरत है।
सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो, सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो।
जिंदगी बस उसी की हुई है सफल, प्रभु
करते चलो सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो सबके दिल में प्रभु